नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर फोन पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर अमेरिका ईरान पर कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को आतंकी संगठन घोषित किया। फसल का त्यौहार मकर संक्रांति देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज राजकोट में। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन में आज स्थायी समिति की बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
3 दिन के इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। सम्मेलन के दौरान संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये ऐतिहासिक आयोजन भारत के लोकतांत्रिक और संसदीय यात्रा में एक मील का पत्थर है, जो भागीदारी और गौरवपूर्ण क्षण का प्रतीक है। सम्मेलन की बैठक के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे होयल को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। इसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ सकारात्मक बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और श्री रूबियो के बीच ये बातचीत नवनियुक्त अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर के व्यापार मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने पर बयान के बाद आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सुदृढ़ और विश्वसनीय भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सेना के जवानों ने कल शाम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसे कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की। सेना ने जम्मू में बताया कि ड्रोन मांझकोट सेक्टर में कुछ देर मंडराने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लौट गए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के भारतीय सैन्य कार्रवाई से जुड़े बयान के बाद ये घटनाएं सामने आई हैं। श्री द्विवेदी ने कहा था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के सामने पाकिस्तानी ड्रोनों का मामला उठाया है। पिछले 3 दिन में जम्मू सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की बात गंभीरता से रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 10वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये दिवस भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की विरासत और सेना के स्मरण में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि संस्थानों में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप और उद्योग केंद्रित होने चाहिए। श्री प्रधान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान परिषद ने संस्थानों में सुधार, विशिष्ट स्नातकोत्तर MTech कार्यक्रमों, सुदृढ़ नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और बहुभाषी शिक्षा के लिए AI को अपनाते हुए भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
देश में जॉब क्रिएटर, उद्यमिता बढ़े, ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से आह्वान किया था नई पीढ़ी को लक्ष्य रखते हुए। हमारी NIT में स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप हो रहा है, उसको गति देने के लिए रिसर्च पार्क तथा इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए निर्णय किया गया। जहाँ जहाँ है उसको और गति दिया जाएगा, जहाँ जहाँ खुली नहीं है उसमें खोलने की तय किया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के अधिकारी देश में जारी अशांति के बीच प्रदर्शनकारियों को फांसी देंगे तो अमरीका कड़ी कार्रवाई करेगा। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कही। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा था कि मदद रास्ते में है। उन्होंने कहा कि ईरान में रक्तपात का स्तर अभी स्पष्ट नहीं है, वे इस स्थिति पर जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं तो अमरीका हस्तक्षेप करेगा। अमरीका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की 3 शाखाओं को आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिए हैं। वित्त और विदेश संगठनों ने इन संगठनों को अमरीका के हितों के लिए खतरा बताते हुए कल रात लेबनान, जॉर्डन और मिस्र की शाखाओं के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने लेबनानी शाखा को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। ये सबसे गंभीर श्रेणी है, इसके अंतर्गत समूह को सहायता प्रदान करना अपराध है। जॉर्डन और मिस्र की शाखाओं को वित्त मंत्रालय ने हमास को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या बढ़कर 2571 हो गई है। ये आंकड़ा अमरीका स्थित मानवाधिकार समूह समाचार एजेंसी ने जारी किया है, जिसने हाल के वर्षों में ईरान में हुए कई अशांतियों के दौरान सटीक आंकड़े दिए हैं। समूह ने बताया कि 18,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु नदियों में पवित्र स्नान कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में मकर संक्रांति, जो कि माघ मेले का दूसरा महत्वपूर्ण स्नान है, कल मनाया जाएगा। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में स्नान के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। कुल 12,100 फीट लंबाई में स्नान के लिए घाटों का निर्माण किया गया है, जिनमें चेंजिंग रूम, पूल, कियोस्क, शौचालय आदि सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
गुजरात में आज उत्तरायण उत्सव पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में यह उत्सव रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर मनाया जाता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की भव्य शुरुआत के साथ साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर आसमान विभिन्न रंगों से और आकृतियों से सराबोर हो गया है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया भर से पतंगबाज गुजरात पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में 1,000 से अधिक पतंग प्रेमियों हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज शामिल है। विशेष बात यह है कि इस वर्ष का महोत्सव भारत जर्मनी मित्रता के प्रतीक के रूप में भी मनाया जा रहा है। उदयपुर राजस्थान से आए पतंगबाज प्रवीण कुमार ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त की।
मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं उदयपुर राजस्थान से आया। इस बात की हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी पतंग उड़ाई, और हर बार की तरह हम इस बार भी मैसेज देना चाहते थे हमारी टीम ने। जैसे इस बार का मैसेज था ऑपरेशन सिंदूर, पिछली बार दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी समय तक उन्होंने हमारी पतंग को बढ़ाया। अभी
इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं उदयपुर राजस्थान से आए पतंगबाज प्रवीण कुमार ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त की और कहा, अहमदाबाद इस पूरे उत्सव का केंद्र बना हुआ है और आज शाम यहाँ नाइट काइट फ्लाइंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। अहमदाबाद के साथ साथ यह महोत्सव राजकोट, सूरत, वडोदरा और कच्छ के ऐतिहासिक स्थल धोलावीरा, वडनगर, शिवराजपुर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। आसमान में पतंग के प्रदर्शन के साथ साथ यह महोत्सव गुजरात की समृद्ध स्थापत्य और कलात्मक विरासत का एक भव्य प्रदर्शन भी कर रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे अहमदाबाद में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। श्री शाह बाद में पतंग उत्सव मनाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। तेलंगाना में तीन दिन का मकर संक्रांति पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ भोगी उत्सव मनाए जाने के साथ शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फसल कटाई के बाद का तीन दिन का यह त्योहार राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जा रहा है।
पहले दिन का संक्रांति उत्सव आज सुबह सुबह जलाई गई एक अलाव से भोगी मंतालू के साथ शुरू हुआ। बच्चों के साथ मिलकर लोगों ने अपने आंगन, सड़क किनारे और चौराहों पर अलाव जलाई।
चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे।
इस बीच रंग बिरंगी पतंगों से भरा हैदराबाद का आकाश सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कल शाम तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव की शुरुआत के बाद राजधानी शहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
तमिलनाडु में आज शीतकालीन मार्गजी माह के अंतिम दिन भोगी पर्व मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों से पुरानी चीजें निकालकर घर के सामने बेकार पड़ी चीजों को जलाते हैं। केरल में आज सबरीमला के पहाड़ी तीर्थस्थल पर मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्रद्धालु पोन्नम बालामेडु में मकर ज्योति के दर्शन करेंगे। उत्सव में भगवान अयप्पा के आभूषण तिरुवा भरणम के साथ शोभा यात्रा सहित कई अनुष्ठान होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 1:30 पर शुरू होगा। भारतीय टीम ने वडोदरा में रविवार को पहले मैच में 4 से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली थी। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को इंदौर में खेला जाएगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 से हरा दिया। नवी मुंबई में कल गुजरात जायंट्स के 193 रन का लक्ष्य मुंबई इंडियंस ने 4 शेष रहते 3 के नुकसान पर हासिल कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद मुकेश। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वक्तव्य सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, देश को रॉकेट फोर्स की जरूरत। नवभारत टाइम्स लिखता है, आर्मी चीफ ने कहा सीमा पार 8 टेरर कैंप, 150 आतंकी हो सकते हैं, हम अलर्ट हैं। जनसत्ता का शीर्षक है, पाक के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान को तैयार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्ते के काटने पर राज्य को देना होगा भारी हर्जाना। अमर उजाला के अनुसार लावारिस कुत्तों की ज्यादा चिंता करने वाले उन्हें अपने घर पर रखें। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक, सरकार का फैसला, सभी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगाम। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स 2026 की शुरुआत, लोगो लॉन्च, विविधता में एकता का प्रतीक है लोगो। राजस्थान पत्रिका ने दिया है, ट्रंप का नया ट्रेड बम, ईरान से व्यापार किया तो 25% टैरिफ, भारत पर भी पड़ सकता है असर। देशबंधु के अनुसार जम्मू कश्मीर में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, आतंकी संबंधों के आरोप में कार्रवाई, लश्करे तैयबा जैसे संगठनों से संबंध। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला देते हुए लिखा है, विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण पोषण की हकदार।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर फोन पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखाओं को आतंकी संगठन घोषित किया। फसल का त्यौहार मकर संक्रांति देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज राजकोट में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।